ki ne sırf ne bir dünya kuruldu onun üstü se sanırı manaj mı çalar ne sade bir onun ne sırf sırf onun ne sırf bir var ki sade sade bir sürü var diye Allah'ın
मेरे जन से निकल गया
ये कि वो 10 मिनट इंग्लिश का प्रोग्राम था उसका क्या हुआ, उसके लिए जैसे कि हमने कल जो आचार्य की तय हुआ कि हम अलग से लेक्चर अरेंज करें और वो जो 10 मिनट का पीस है उससे शायद इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं हो पाएगा। मुझे डर ये लग रहा है कि जो सिर्फ इंग्लिश सुनने वाले हैं वो मुतासर हो रहे होंगे और वो ऐसा ना हो कि फिजिकली कॉर्नर हुए हैं प्रैक्टिकली कॉर्नर ना हो जाए, मुझे इसका डर लग रहा है। तो अल्लाह उनको बीच में रखे इंशाल्लाह, उनकी कोशिशों को दावतों को। कल जो लोग हाथ मिलाते गुजर रहे थे जैसे हर वो शख्स जिसके बारे में गुमान जाता था कि इसको उर्दू समझ में नहीं आती होगी, मैं उससे पूछ लेता था उर्दू में समझ में आता था, ज़्यादातर ने कहा नहीं समझ में तो आ जाता है बोल नहीं पा। तो अल्लाह करे कि मुश्किल आसान हो जाए, ऐसा ना हो कि उन लोगों को कुछ भी इस एतबार से न मिल सके कि वो आए भी यहाँ पर बैठे भी और उसका कोई फायदा ना हो। पर इंशाल्लाह कुछ प्रोग्राम अरेंज हो जाए और सेक्रेटरी साहब जो है उसकी इंतजार देंगे कि उसकी टाइमिंग क्या होगी, उसकी ट्रेनिंग वगैरह क्या होगा, इंशाल्लाह काम किया जा पाएगा। दुरूद है मोहम्मद व
शुरू से कुछ कुछ याद आएगा आपको कि मसलन
एक साल डेढ़ साल दो साल उस अंदाजे से।
क्या यहीं से आप शुरू हुए या इससे पहले भी कहीं जिंदा थे? अच्छा सवाल आया, हमारी जिंदगी इंसान होने के नाते मेरी जिंदगी आया सर तौर पर 1970, 1960, 1980 यहां से शुरू हुई है या मैं पहले भी कहीं जिंदा था और ये एक स्टेज है? एक बेसिक क्वेश्चन,
माशाल्लाह।
इस क्वेश्चन पे डिपेंड करके एक और क्वेश्चन आएगा, ये फाइनल स्टेज है या इसके बाद कोई और स्टेज भी है? सही है, हम लोग मुसलमान होने के नाते एक बात से बिल्कुल क्लियर है, ये फाइनल नहीं, इसके बाद बहुत कुछ है। इसमें हमने गौर नहीं किया कि इससे पहले क्या था, इस पर हमने गौर नहीं किया। सही है, अभी बिल्कुल ब्रीफली, इससे पहले भी बहुत कुछ था, इसके आगे भी बहुत कुछ है, ये बीच का दौर है। हाँ, ये बीच की, ये बीच की एक जगह है, यानी एक हम लोग जुमला इस्तेमाल करते हैं, दिन रात शायद इस्तेमाल करते हो, हकीकत पे काम गौर किया है, आप सब ने इस्तेमाल किया, मैंने भी इस्तेमाल किया, हम सब कहते हैं इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम सब खुदा से हैं और हम सब खुदा की तरफ पलट कर वापस चले। सही, हमने इसको बताने के खातिर, इसको आसान करने के खातिर मैंने दो प्रश्न उठा दिया। नंबर एक, पहले क्या था जो अब हम यहाँ पर हैं और आगे क्या होगा, नंबर एक, और ये दूसरी बात इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। इन दोनों को आसान करने के लिए, सिंपलीफाई करने के लिए मैं एक मिसाल दूंगा, गुरु मिलेगा मोहम्मद वाले
बिल्कुल ऐसे ही, जैसे मसलन अगर वो
बंदे खुदा जिसने ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम लिखा, किताब लिखी, अगर वो उसके अंदर मैथमेटिकल फॉर्मूलाज दे देता तो मैं वो किताब पढ़ नहीं सकता था। तो उसका फन ये था क्या नाम से निकल रहा, जिसने जो चेयर के ऊपर होता है और उसने चलिए बर किताब उसने इस तरह से लिखी कि उसने मैथमेटिकल फॉर्मूलाज नहीं दिए और उसने मैथमेटिक्स के रूल्स को बहुत अच्छा समझा दिया। तो अब हमें ये करना होगा कि हम फिलोसफिकल बात करें लेकिन फलसफे की जबान में ना करें, हम आसान जबान में करें ताकि बात करने की जा सके। तो इसके लिए बहुत आसान मैं एक मिसाल देता हूँ, मिसाल थोड़ी सी शायद किसी को अच्छी ना लगे लेकिन चल जाती है मिसाल, बहुत अच्छी मिसाल है। मिसाल है एनालॉग घड़ी की, आपके सामने एनालॉग घड़ियां होती हैं जिसमें टॉप पे 12 लिखा हुआ होता है और उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5 और बिल्कुल बॉटम में 6 आ जाता है और उसके बाद 7, 8, 9, 10, 11 और फिर टॉप में 12 आ जाता है। माजरत के साथ कह रहा हूँ, यूं समझ लीजिए जैसे वहां जहाँ 12 लिखा हुआ है वहां अल्लाह है और जहां 6 लिखा हुआ है ये हमारी दुनिया है और ये पूरा हमारा सफर है। हम अल्लाह से शुरू कर रहे हैं, बहुत सारे मराहिल को तय करते हुए 6 में आ गए जो बॉटम पर है। इस खातिर दुनिया दुआए नुदबा ने इसके लिए लिखा था दुनिया दनिया, ये पस्त जगह है और दुनिया का नाम दुनिया है इसलिए कि ये पस्त जगह है। क्यों पस्त जगह है? कहते हैं अल्लाह से कोई मरहला इतना दूर नहीं है जितना दुनिया दूर है, ये खुदा से बहुत दूर है, खुदा की औसाफ से बहुत दूर है। क्या दूरी है इसके अंदर? इसमें मादा है और खुदा ने जो कुछ खल्क किया है उसमें सबसे पस्त मादा है। खुदा नूर है, खुदा मादा नहीं है, लेकिन खुदा ने पस्त चीज भी खल्क की है वो मादा है और हम उस मादी दुनिया के अंदर, लेकिन हम मादी दुनिया में तो हैं जिसमें रहने के लिए खुदा ने हमें बदल दिया वरना हम मादी दुनिया में आ नहीं सकते थे। लेकिन उसने याद दिलाने के लिए कि तुम्हें जाना कहाँ है हमें रूह भी दी गई है, बस उसने हमें एक ऐसा चैप्टर दिया हुआ है जो इस दुनिया से ताल्लुक रखता है जो पस्त जगह है वो बॉडी है, और एक चैप्टर उसने हमारे अंदर ऐसा रखा है जिसका ताल्लुक खुद उससे है क्योंकि हम वहां से शुरू हुए थे और वो हमारी रूह है जिसको वो कहता है कि मेरी रूह में से तुम्हारे अंदर है। सही, हमने लंबे लंबे सफर तय कर लिए हैं, अब हमने पर्स जगह के ऊपर आए हुए हैं, अब यहां से कहां जाना है? अब हमें फिर खुदा की तरफ जाना है। जब हम खुदा की तरफ जाएंगे बीच में क्या क्या होगा? ऐसी मिसाल के तौर पर कह रहा हूं कि क्या कौन कौन से मरहले तय करेंगे, तो हम कहते हैं कि हम 3 मरहलों में इस वक्त गुजारेंगे और एक्चुअली वक्त नहीं गुजारेंगे क्योंकि वक्त सिर्फ दुनिया में है, दुनिया से पहले वक्त नहीं था, दुनिया के बाद भी वक्त नहीं होगा। टाइम जो स्पीड और डिस्टेंस का एक रिजल्ट होता है ये सिर्फ इस दुनिया के अंदर न पहले न बाद में, लेकिन हम कहते हैं तो हम कौन कौन से स्टेजेस गुजारेंगे? अब हम यहाँ पे दुनिया में आए, यहाँ से निकलेंगे, एक स्टेज आएगा उसका नाम क्या है? उसको हम बरज़ख कहते हैं। उसके बाद एक और स्टेज आएगा, उस स्टेज का नाम क्या कहेंगे? ऐसी आसानी के लिए कह रहा हूं, बस हम उसे कहते हैं महशर। उसके बाद एक और स्टेज आएगा, उस स्टेज को हम क्या कहेंगे? यूं आसानी के लिए कह रहा हूं, उसको हम जन्नत कहते हैं। सही, स्टेज कितने हैं हमें नहीं मालूम, हमें नहीं मालूम कितने स्टेज। इस दुनिया की क्या हैसियत है? ये दुनिया बोनस के लिए है, ये दुनिया बहुत अजीब है। इस दुनिया में हमारे स्टे कितना है पता नहीं, एक दिन से लेकर 200 साल 400 साल, पहले जमाने के लोग 1000 साल की जिंदगी गुजारते थे। खुदा उनका कुरान करीम में फरमाता है हजरत नूह ने तूफान से पहले 950 साल जिंदगी गुजारी, कुरान करीम में लिखा। इसका मतलब पहले जमाने के लोगों की जिंदगी बहुत ज्यादा होती है। हमारे इससे बहाना आज की दुनिया के मुताबिक 50, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, बहुत कोई तीर मार गया 110-100। मुझे नहीं मालूम उससे होगा क्या, जाना तो है बार। अरे इसमें ये बोनस क्यों क्यों कहा गया है? इसमें बोनस पॉइंट ये है कि यहां सिर्फ 50 साल अल्लाह की इताअत कर लें तो जो अगले स्टेज में लाखों साल में मिलना है वो खुदा दे देगा। ये बोनस
यहाँ 30 अच्छा अब अगर मतलब मेरी उम्र 70 साल हुई प्रैक्टिकली मैंने कितना अर्सा एक्टिविटी में गुजारना है मुश्किल से 30-40 साल 10-15 साल तो मेरा बचपन ही गुजर गया और 10-15 साल बुढ़ाते का बचपन गुजर गया और वो भी एक बचपन है प्रैक्टिकली जो मेरे पास रह जाएगा वो 30-40 साल रह जाएगा और वो भी मैंने 70 साल उम्र लगाई है उसका पता नहीं हमारे दुश्मनों को खुदा रहम करे वो हमें जल्दी जल्दी फारिग कर रहे हैं पर टाइम बहुत कम है ज्यादा टाइम नहीं है और अगर हम उसको सही पिक कर गए तो क्या होगा जो अगली दुनिया में बरसख में 1000 साल में होना है वो यहां 5 साल में हो जाएगा अब क्या होना है ये मैं बताता चलूं क्या होना है तो ये स्टेजेस तो यूं सामने आते हैं हल्का फुल्का कि भाई यूं घूम कर आए यहां तक आए यहां से घूम के फिर ऊपर जाना है और इसमें कई स्टेजेस क्रॉस करने हैं इनका कनेक्शन क्या है एक दूसरे से नाता क्या है और जो मैंने कहा मुमकिन है कोई ये कहे कि भाई मैं इस गेम में नहीं आना चाहता बड़ा खतरनाक गेम है आपके इरादे में है नहीं कि आप गेम में ना आए ये है इसको कोई स्किप नहीं कर सकता होना क्या है ये होना है जो मैं आपके खिदमत में कहूंगा दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद मैंने आपकी खिदमत में आज किया था हमारे हदफ क्या है हदफ खलकत हमें अल्लाह के आसमान तक पहुंचना है सबने वहीं तक जाना है सबने वहीं पे जाना है कुछ ने अपनी मर्जी से तीन पैरामीटर बोलूंगा अपनी मर्जी से इस दुनिया के अंदर आसानी से कम वक्त में इस काम को कर लेना है कुछ लोग क्या करेंगे अपनी मर्जी से करेंगे कहीं हमें अल्लाह जैसा बनना है हम अपनी मर्जी से बनेंगे अपने इरादे को इस्तेमाल करेंगे खुदा की सिफारत अपने अंदर ले आएंगे इस दुनिया के अंदर कर लेंगे अगली दुनिया में नहीं छोड़ेंगे नहीं तो कर लेंगे और कम मुद्दत में कर लेंगे 30-40 साल मेहनत करेंगे ये हो जाएगा अच्छा अगर किसी ने ये नहीं किया अपनी मर्जी से इस दुनिया में कम मुद्दत में नहीं किया तो क्या होगा कोई बात नहीं ये तो शेड्यूल तो है कि करना है अब आपके पास क्या था अपनी मर्जी से करो इस दुनिया में कर लो और कम मुद्दत में कर दो अगर नहीं किया तो क्या होगा कुछ नहीं होगा बर्जख में जाओगे फिर होगा वहां पर क्या होगा वहां मर्जी से नहीं होगा फिर जबर से होगा पिट पिट के होगा होना है बचेगा कोई नहीं अपनी मर्जी से नहीं होगा यहां तो मर्जी से होगा ना भाई मैं रोजा रखूंगा अपनी मर्जी से रखूंगा झूठ को छोड़ दूंगा अपनी मर्जी से छोड़ूंगा अपनी मर्जी से करो वहां अपनी मर्जी नहीं होगी वहां जबर होगा दूसरी बात इस दुनिया में कर रहे थे अगर इस दुनिया में नहीं किया वो वहां बहुत लंबी दुनिया है और भी दुनिया में पड़ जाएगा यहां कम मुद्दत में हो रहा था 30-40 साल में अब वहां ही मालूम 3 लाख साल लग जाएंगे हमें नहीं मालूम बस आपको एक टास्क है जो फुलफिल करना है अल्लाह क्या कह रहा है यही तो कर लो रिवॉर्ड देता है ये दे दूंगा वो दे दूंगा सब कुछ दे दूंगा किसको दूंगा जो यहां कर ले अच्छा अगर यहां नहीं किया तो क्या होगा फिर बहुत बुरा हो गया तुम आ जाओगे अब मैं करवाऊंगा और बहुत पिटोगे लंबी मुद्दत लगेगी और जब होगा फिर क्या होगा खुदा ना करे अगर यहां पर नहीं हुआ तो बरसात में चल जाएगी का वहां पे होगा अच्छा अगर वहां पर भी कंप्लीट नहीं हुआ मतलब मैंने काम बहुत ही खराब कर दिया तो क्या होगा कहते फिर कुछ नहीं होगा फिर बर्जख से निकलोगे तो आगे बहुत बुरा होगा अगर मैदान हशर तक पहुंचते पहुंचते भी नहीं हुआ तो फिर मैं आग में डाल दूंगा फिर उसके बाद होगा आप समझ रहे हैं ये वो चीज नहीं कि आप स्किप कर सके ये छोड़ने के काबिल नहीं है ये तो होना है कतई होना है लिहाजा कोई ऐसा रास्ता है ही नहीं कि मिसाल के तौर पर मैं नाउजुबिल्लाह ताला यहां पे झूठ बोल रहा था और नाउजुबिल्लाह ताला मेरा टाइटल झूठे का हो गया उसके बाद मैं कहूं मैं इस गेम में नहीं हूं इसको छोड़ देता हूं आगे चला जाता हूं आगे जाऊंगा तो क्या होगा और फिर वही टाइटल झूठा है अच्छा झूठे के टाइटल के साथ क्या होगा? तो पनिशमेंट होगी, पता नहीं कितने हजार साल पनिशमेंट होगी। उसके बाद अगर वो टाइटल रिमूव हो गया उस पनिशमेंट की वजह से, तो मामला खत्म हो गया, बरज़ख के बाद तुम्हें मुसीबत गुजार दी, महशर के अंदर साफ सुथरे होगा। और अगर वहां पे भी सही नहीं हुआ तो फिर नाउजिल्ला महशर के अंदर अगर टाइटल झूठे का लग गया तो फिर तो बहुत बुरा होगा, फिर तो जहन्नम में जाना पड़ जाएगा, तो आग में जाना पड़ जाएगा। वहां कितना अरसे चलना है? अगर बरज़ख 3 लाख है तो जहन्नम को तो खुद ही सोच लो, उसको तो खुदा कहता है हमेशा के लिए। हम इन अस्माए हुस्ना पर आए बगैर कहीं नहीं जा सकेंगे, ये हमें करना ही करना है। अब मैं इसकी मिसाल अर्ज करता हूं, ये तो एक रियलिटी हो गई। अच्छा मुमकिन है कोई ये कहे नहीं बस हमारे साथ कुछ हो जाएगा, तो मैं उसको कुछ के लिए अर्ज कर देता हूं। कुछ क्या जहन में है? कुछ ये जहन में है कि किसी भी वजह से हम बख्श दिए जाएंगे, किसी भी वजह से बख्श दिए जाएंगे, कतन ऐसा होगा। अल्लाह ने बहुत सारे टाइटल्स रखे हैं जिसके तहत बख्शिश हो जाती है, लेकिन एक प्रॉब्लम बीच में है, वो मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर देता हूँ। दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद शख्स इस दुनिया के अंदर जहर खाता है, कोई बहुत जबरदस्त किस्म का पॉइजन है तो उसने ले लिया है। अच्छा कानून में इजाजत है इसकी? कानून में इजाजत है? ऑस्ट्रेलिया में इजाजत है? नहीं। सही। शरीयत इजाजत देती है? फिजिकली क्या होगा, बॉडी के लिए क्या होगा जहर खाने से? मौत आ जाएगी। सही। बस यहां पर दो टाइटल्स हो गए, एक टाइटल है अल्टीमेटली फिजिकली मेरी बॉडी के ऊपर इसका असर क्या पड़ेगा, एक। दूसरा टाइटल क्या है, कानून के एतबार से इसकी सजा क्या है। ये कानूनी अनुमान है हमारे पास, एक कानून का टाइटल है, लीगली ये सही है या गलत है, इसके ऊपर ये जुर्म है, इसकी सजा ये है। अच्छा कानून से हटकर एक और मसला है, वो क्या है, बॉडी के लिए क्या होगा। फर्ज कर लें, ऐसे मैं कह रहा हूं, किसी भी कानूनी जंग में आकर मैंने जीत लिया कि जहर खाना मेरा हक था, क्या उससे भी बॉडी को जो नुकसान पहुंचना है वो बच जाएगा? नहीं, बॉडी को तो नुकसान होना ही होना है। क्यों? जहर का एक अल्टीमेट रिजल्ट है, जहर का एक रिश्ता बना हुआ है बॉडी के साथ, वो जहर का असर इंपैक्ट होना ही होना है, उसे कोई लीगल बैटल से जीत नहीं सकता है। बरज़ख वो अल्टीमेट इंपैक्ट है, उसे कोई लीगल बैटल से जीत नहीं सकेगा, बरज़ख सबको उठाएगा। बस जितना भी लीगल बैटल से आप जीतने की कोशिश करेंगे वो कहां पर होगी, वो महशर में। बरज़ख वो अल्टीमेट रिजल्ट है जो हमारी कैरेक्टर का हमने उठाना है, इसका कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मेरे पास बहुत सारी रिवायतें इसके ऊपर मौजूद हैं कि बरज़ख का असर क्या है। बस बरज़ख कैसी जगह है? बरज़ख ऐसी जगह है कि मिसाल के तौर पर कोई जहर खाए तो जिस्म पे क्या होता है, जिस्म पे एक असर होता है। कानून की जंग से जीत सकते हैं क्या? नहीं, कानून की जंग वहां फायदा नहीं देती। हमारी आखरत में ऐसी एक हमारी आखरत है मैदान हश्र, उस मैदान हश्र की आखरत में सारी बैटल चलती है, वहां सारे ऐसे टाइटल आ सकते हैं जिससे मैं बख दिया जाऊं। लेकिन उससे पहले की एक दुनिया है जो अल्टीमेट रिजल्ट की दुनिया है, उसमें कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है। मसलन होना क्या है बरज़ख के अंदर और हमसे पहले वाले में क्या होगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं इस पॉइंट पे थोड़ा सा और क्लियर करूंगा आपकी खिदमत में ताकि बिल्कुल ही गुमराह ना रह जाए। दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। इस तरह से ले लीजिए, आप फर्ज फरमाइए मैं क्लास 6 से निकला और क्लास 7 में आ गया, क्लास 7 में आ गया। अब मैंने क्लास 7 का एग्जाम दिया और खुदा ना करे क्लास 7 के एग्जाम में फेल हो गया, दो ऑप्शन थे, या पास होता या फेल होता। अगर पास होता तो 8 में जाता और फेल हो गया तो 7 में रह गया। क्या कोई चांस है कि फेल होकर 6 में चला जाऊं? नहीं। हमारे यहां बरज़ख जख्मी चांस है। वो क्या चांस? अब दुनिया में आए सिर्फ सिर्फ इंसान बन के। प्लीज गौर कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कॉम्प्लिकेशन में ना डालू, तब भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। सही, अभी कॉम्प्लिकेशन तो बहुत ज्यादा हो जाएगी। मैं तो इसको बहुत सिंपलीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। हम लोग जब दुनिया में आते हैं तो हम एक टाइटल लेकर आते हैं, हम इंसान हैं, ह्यूमंस। यूं समझ लीजिए इंसान होना सिर्फ है, और जो हमारी डेस्टिनी है वो 100 है, हमें खुदा की तरफ पहुंचना है, वो 100 है। अच्छा, जो लोग इंसानियत का इम्तिहान दे रहे हैं 50 years, 60 years, 70 years देने के बाद पास हुए या फेल हुए, बरज़ख में पहुंच गए। अब जो बरज़ख में पहुंचे तो कितनी कैटेगरीज बनेगी? एक कैटेगरी वो बनेगी जो अपने फाइनल डेस्टिनी के ऊपर पहुंच गई, जो उसने बहुत देर में पहुंचना था। आगे सारी 7, 8, 9, 10, 11 को क्रॉस करने पर 12 पे पहुंचना था, उसने यही के सारे तय कर लिए। बहुत तकलीफी हुआ, बहुत कम लोग हैं, सदियों में चंद लोग ऐसे आते हैं जो आगे के भी सारे मराहिल यहीं पे तय कर लेते हैं। हैं तो क्लास 6 से, लेकिन जब पास करके निकलते हैं तो पीएचडी हुए भी होते हैं। बाकी कोई मरहला तय नहीं करना पड़ता उनके लिए। हमारे पास रिवायतें मौजूद हैं, एक रिवायत में लिखा है कि हमारे लोग दुनिया में से कुछ ऐसे जाएंगे जो बरज़ख में सिर्फ 3 दिन रुकेंगे, क्योंकि उन्होंने सारे मराहिल तय कर लिए होंगे, खुदा उनको वैसे ही गुजार देगा। ये बहुत कम लोग होंगे, सदियों में आएंगे, और चंद लोग आएंगे जो ये काम कर लेंगे। क्या क्या कर देंगे? वो जब दुनिया में होंगे तो बरज़ख, आगे की दो दुनियाओं के हम एक टाइटल इस्तेमाल करते हैं, आलम निसाल और आलम आखिर, उसके भी सारे मराहिल तय करके खुदा तक पहुंच चुके हैं, गुजर गए सब। ये तो बहुत अच्छी होगा। कुछ लोग ऐसे आएंगे जो दुनिया में आएंगे, जो दुनिया में अचीव करना होगा वो कर लिया, जो दुनिया में रहने का था काम, जो भी यहां पे असाइनमेंट था वो लिया, बरज़ख में पहुंच गए सक्सेसफुल, कामयाब, क्योंकि जो ड्यूटी थी वो पूरी कर दी, मामला खत्म हो गया, बरज़ख आसान। कुछ लोग ऐसे होंगे जो यहां से जाएंगे बरज़ख में, आधा काम किया हुआ, जो करना था यहां पे उसमें से आधा किया हुआ। अभी जो बरज़ख में जाएंगे तो क्या होगा? वो जो आधा बच गया है वो वहां पर निपटेगा, वहां पे निपटेगा। यहाँ आसानी से होना था, वहां सख्ती से होगा। यहाँ कम मुद्दत में होना था, वहां ज्यादा मुद्दत में होगा। जो तज़किया नफ्स इनको दुनिया में करना था, इन्होंने आधा किया है, बरज़ख में जाएंगे बाकी आधा करना होगा, बहुत सख्ती से होगा। सही है। कुछ लोग होंगे जो फेल हो गए, क्या मतलब? 0-0 आए थे, 0-0 एग्जिट कर दिया, ओह बहुत बुरा किया, जो काम 50-60 साल में हो जाना चाहिए था अभी बरज़ख में पहुंच गए, अब नहीं मानो 5 लाख साल लग जाएंगे, 6 लाख साल लग जाएंगे। अब एक और मसला ये, यहां तक तो वो था जो हमारी दुनिया में भी होता है, क्या ऐसा हो सकता है कोई बरज़ख से निकले, दुनिया से निकले, बरज़ख में जाए और -10 हो गया, -20 हो गया, क्या ये भी हो सकता है? हाँ हो सकता है। ये कौन होगा? ये वो होगा जिसने इंसान की कैरेक्टरिस्टिक्स को नहीं लिए, खत्म हुआ मामला, उल्टा जानवर बन गया, उल्टा जानवर बन गया। आप कहेंगे भी हमें तो आज तक नजर नहीं आया कोई दुनिया में मरा हो जानवर बन गया। मसला इसके साथ ये हुआ है कि इसने ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स को नहीं लिया, जो इसने ले लिया वो जानवरों की कैरेक्टरिस्टिक्स थी। अब जब इसने एग्जिट किया, अब ये बरज़ख में जानवर बन गया। इसके साथ क्या हुआ है? -10 हो गया, -20 हो गया। इससे बदतर भी हो सकता है, बहुत हो सकता है, मुमकिन है कि इंसान बिल्कुल भी खत्म हो गया हो मामला। इसमें कितने स्टेजेस हैं? अनलिमिटेड स्टेजेस। मिसाल के तौर पर बिल्कुल एक साफ सुथरी और मिसाल, इतनी मिसालों के साथ, मसलन फर्ज करें नाउजुबिल्लाह एक आदमी को मक्कारी की आदत पड़ गई, मक्कारी की आदत पड़ गई। अच्छा, इसको होना क्या था? इसको अर्द इंसाफ करना था, इसको लोगों के लिए रहमदिल बनना था, ये इसका असाइनमेंट था। इसने नहीं किया तो सिर्फ सिर्फ हो गया, उल्टा कर दिया, क्या मतलब? मक्कारी की आदत पड़ गई, धोखा देने की आदत पड़ गई, झूठ बोलने की आदत पड़ गई। अब क्या होगा? ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये जानवरों की, इनमें से भी कुछ जानवर ऐसे हैं जो हल्के फुल्के जानवर हैं और कुछ जानवर ऐसे हैं जिनको हम दरिंदे कहते हैं। मसलन एक आज जानवर ऐसा होता है जैसे मसलन सांप है, बिच्छू है, ये भी जानवर है। कुछ जानवर जो दरिंदों की तरह है, चील फाड़ खाते हैं, सही है। इससे भी बदतर हो सकता है क्या? हाँ, इससे बदतर हो सकता है। वो क्या? कोई ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स इसने ले ली है जो शैतान की है। अब जब ये बदतर में एक्सेप्ट करेगा तो क्या होगा? इंसानियत का असाइनमेंट नहीं किया, 00 पे भी नहीं था, जानवर में भी नहीं था, बल्कि एक्सेप्ट किस पे कर गया? शैतान पे कर गया। वो क्या हो सकता है? जैसे तकब्बुर, तकब्बुर शैतान की सिफत है। अगर कोई उस पे एक्सेप्ट कर रहा है, इसका मतलब यह है कि ये तो बहुत ही बुरा कर गया, ये तो -50 भी चल गया। अब क्या होगा? अब ये होगा कि पहली बरसात में चलेगा, इतना चलेगा इतना चलेगा कि ये माइनस इसकी खत्म होते होते 00 पे पहुंच जाएगा। फिर दोबारा चलेगा, इतना चलेगा कि वो जो इसको 100 अचीव करना था दुनिया के अंदर वो अचीव करेगा और उसके बाद बरसात खत्म होगी, फिर ये महशर में जाएगा। और ये अगर अनलकी हुआ तो बरसात में असाइनमेंट कंप्लीट नहीं होगा, ये महशर में उठा लिया जाएगा। बहुत अनलकी हुआ तो महशर में भी -30 पे उठ जाएगा, फिर जाएंगे। इसमें कोई स्किप नहीं कर सकता, इसे कोई छोड़ नहीं सकता, ये होना है। मसलन मुझे 28 साल हो गए नहीं तालिबे बने हुए, मैं आपसे कहूं मेरे पास एक रास्ता है, आप ये बर्जर स्किप कर देंगे, सिवाय इसके कि आप अपने असाइनमेंट को यहां पे कर चुके, उसके सिवा कोई रास्ता नहीं। सबने इसी रास्ते से गुजरना, और कितना ही आपसे कहूंगा कि नहीं एक और रास्ता है, एक और रास्ता है, कोई रास्ता नहीं, रास्ता ये रास्ता तब नहीं आ सकता। और ये हमारी रूह का कैरेक्टर है, जो हमारी रूह है हमारे तमाम अमाल का एक स्टोरेज टैंक है, हमारी रूह है ये तमाम अमाल को स्टोर कर रही है। इसके स्टोरेज की इसका तरीकेकार क्या है स्टोरेज का, वो मैं आपकी खिदमत में इशारतन अर्ज कर दूं, दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। आपने वाटर टैंक्स देखे होंगे, वाटर टैंक्स, ऐसा कोई टैंक देखा आपने जिसके अंदर अगर पानी ना हो, मिसाल के तौर पर ऑयल हो तो टैंक का कलर चेंज हो जाए, ऐसा कोई देखा? मेरा बच्चा मेरे पास एक मग लेके आया था चाय पीने का, कहने लिखी मैजिकल मग, इंग्लिश मैजिक है, उसके ऊपर पिरामिड्स की एक पिक्चर बनी हुई थी, कहने जब आप इसमें ठंडा डालेंगे तो पिरामिड ब्राउन होगा और अगर आप इसमें गरम डालेंगे तो पिरामिड ब्लैक हो जाएगा। अच्छा तो ट्राई कर लेते, ट्राई किया, ठंडा डाला तो पिरामिड ब्राउन हुआ और ब्लैक, अगर गरम डाल दिया चाय डाली तो पिरामिड ब्लैक हो गया। अब मुझे नहीं मालूम उसने मग की क्या सब्सटेंस इस्तेमाल किया, लेकिन ये हो रहा था। अच्छा, इसका मतलब क्या है? बास ऐसे कंटेनर्स होते हैं जो अपने कंटेंट्स से चेंज हो जाते हैं, ये हमारी रूह है, ये हमारी रूह है
माशाल्लाह।
हमारी रूह हमारे आमाल के कंटेंट्स से शेप चेंज कर देती है। अगर उसके कंटेंट्स ह्यूमन हो तो रूह ह्यूमन होती है, अगर कॉन्टेंट्स एनिमल की हो जाए तो स्पिरिट भी एनिमल की होती है, और अगर कॉन्टेंट्स शैतान के हो जाए तो फिर स्पिरिट शैतान की बन जाती है, और इस स्पिरिट में बरज़ख में हमारे सामने आ जाएगा। अब उसके बाद क्या होगा? एक आदमी यहां से एग्जिट करेगा और वो इतना खूबसूरत नहीं होगा दुनिया के अंदर, बरज़ख में उठेगा इंतहा खूबसूरत हो जाएगा, तो वो कहेगा भाई मैं इतना खूबसूरत कैसे हो गया? तो खुदा उसको समझाएगा कि तुम्हारे आमाल खूबसूरत है, तुम्हारी स्पिरिट खूबसूरत है। फिर कोई यहां से एग्जिट करेगा, जब वो उठेगा तो देखेगा ये क्या हो गया, मैं तो इंसान में जानवर क्यों बन गया? तो खुदा से पूछेगा खुदा तुम मुझे जानवर क्यों बना दिया? तो वो कहेगा कि तुम्हारे आमाल जानवरों के थे, लिहाजा तुम्हारे एग्जिट पर हमने तुमको जानवर बना दिया। مولانا کی روایت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد والے مولانا نے روایت کی شاعری فرمائی، فرمایا الناس نیام اذا ماتوا تنتبهوا اذا ماتوا تنتبهوا، فرمایا لوگ سو رہے ہیں جب مریں گے تو جاگ جائیں گے، لوگ سو رہے ہیں مریں گے تو جاگ جائیں گے۔ سوتے ہوئے آدمی کے سامنے آپ دنیا کا بہترین ماسٹر پیس رکھ دیجئے، تعریف کرے گا نہیں؟ سوتے ہوئے انسان کے سامنے شیر آ کر کھڑا ہو جائے اسے کھانے کے لیے آواز نہ نکالے تو یہ سوتا ہوا آدمی ڈرے گا اس سے نہیں؟ ہم ایسے ہم سو رہے ہیں اور مولا کیا فرما رہے ہیں، اس کا ماتم تھا جو جیسے ہی مریں گے جاگ جائیں گے۔ اچھا ہم تو ابھی جاگ نہیں رہے، کیا ہو مولا اب جاگ رہے اور مولا کیا کہہ رہے ہیں لوگ سو رہے ہیں، یہ کس آنکھوں کا سونا کہہ رہے ہیں، کس آنکھوں کا جاگنا کہہ رہے ہیں؟ برزخ کی آنکھوں کا، جو انہوں نے فرمایا روح کی آنکھوں، ہماری روح کی دیکھنے والی آنکھیں جس کو میں برزخ کی آنکھیں کہہ رہا ہوں وہ سو رہی ہیں، ہم صرف اپنی باڈی دیکھ پا رہے ہیں، جیسے مریں گے باڈی ختم برزخ ظاہر، اس وقت پھر ہم اپنی آنکھوں سے ہم اپنی برزخ کی شکل کو دیکھ پائیں گے، اور ہماری برزخ کی جو شکل ہوگی وہ کس کے مطابق ہوگی؟ ہمارے ان اعمال کے مطابق ہوگی جو ہم نے یہاں پر کیے ہوں گے، کیونکہ میں نے کہا ہماری اسپرٹ ایک کنٹینر ہے ہمارے اعمال کے لیے، اور ایک ایسا کنٹینر ہے جو کانٹینٹس کی وجہ سے اپنی شیپ کو چینج کر دیتا ہے، صحیح ہے؟ اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ میں نے یہاں پر بہت اچھا کوئی کام کیا اللہ کی راہ میں تو میری اسپرٹ پیوریفائڈ ہو گئی اور میں اچھا انسان بن گیا، اور نعوذ باللہ میں نے رات میں کوئی بہت غلط کام کیا اور صبح کو ایسا ہوا کہ میری اسپرٹ بہت خراب ہو۔ دنیا میں یہ کام نہیں ہوتا، میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا باڈی اگر ایک دفعہ سات سال آٹھ سال دس سال گروتھ کر دے تو پیچھے نہیں جاتی ہے، آگے ہی جاتی ہے، اسپرٹ میں ہوتا ہے، اس میں فلکچویشن بہت اسٹرانگ ہے، ایک دم سے ترقی کر سکتی ہے ایک دم سے نیچے آ سکتی ہے۔ ایسا ہمارا اصلی امتحان یہاں پر یہ ہے، جو اصلی ٹاسک ہے ہمارے پاس وہ یہ ہے، ہم لوگ کچھ اور سمجھ رہے ہیں، ہم میں سے اکثر لوگ اس بات کو نہیں سمجھ رہے کہ ہمارا اصلی کام یہاں پہ کیا ہے، ہم لوگ کچھ اور سمجھ رہے ہیں۔ اگر آپ اس اصلی کام کو پہچان لیں وہ پارٹ ٹائم جاب نہیں ہے تو فل ٹائم جاب۔ اچھا ہم لوگوں کا دین کیسا ہے، پارٹ ٹائم ہے فل ٹائم؟ ہاں ہم لوگ اپنے دین سے ڈیل ایسے کر رہے ہیں جیسے پارٹ ٹائم ہے، کوئی بات پارٹ ٹائم نہیں ہے، فل ٹائم کیسے؟ فل ٹائم ہے، آپ شاپنگ سینٹر میں کھڑے ہو آپ کے دین کا ٹیسٹ چل رہا ہے آپ کے ساتھ، آپ اپنے آفس میں بیٹھے ہو جس کا تو خدا سے کوئی تعلق نظر نہیں آ رہا ہے، آپ کا تو ہے، آپ کی تو جاب چل رہی ہے، یہاں پہ بھی ہے، گھر پہ بھی ہے، پارک میں بھی ہے، آفس میں بھی ہے، مارکیٹ میں بھی ہے، یہ فل ٹائم جاب ہے۔ اس فل ٹائم جاب میں کرنا کیا ہے؟ آپ نے انسان بننا ہے، انسان کی خاصیتوں کو اپنے اندر لانا ہے۔ انسان کی خاصیتیں کون سی ہیں؟ وہ جو خدا کی خاصیت ہیں، جو خدا کے اسماء ہیں وہ آپ کو اپنے اندر لانا ہے، یہ آپ کی جاب ہے۔ اچھا آپ ایک اور اسمپشن لے لیتے ہیں، فرض کریں میں روزانہ 100 رکعت نماز پڑھتا ہوں اور وہ کوالٹیز نہیں لا پا رہا اپنے اندر تو میں کامیاب ہوں یا ناکام ہوں؟ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا اللہ نے 11 قسمیں کھا کر کہا تھا یہ آدمی ناکام، اس نے 11 قسمیں کھا کر یہ نہیں کہا تھا جو عبادت کرے گا وہ کامیاب ہوگا، کیا کہا تھا؟ قد افلح من زکاہا، جو اس نفس کا تزکیہ کرے گا جس کا ایک پارٹ عبادت ہے وہ کامیاب ہوگا، باقی پارٹس کیا ہیں؟ آپ کے اخلاقیات، آپ کے عقائد، وہ سب چیک ہو رہے ہیں۔ بس ہمارے پاس 3 فیکلٹیز ہیں دین کے اندر، ایک ہمارے بلیفس، ایک ہمارے مورل ایتھکس، और एक हमारी प्रैक्टिसेस, इन तीनों पर मिलकर दीन बना हुआ है। अगर कोई क्या ऐसे प्रैक्टिसेस करूंगा, रोजा रखूंगा, नमाज पढ़ूंगा, कुरान पढ़ूंगा, बाकी मैं आजाद हूं, नहीं बाकी आजाद नहीं हूं, और तुम्हारा दीन का हिस्सा है, इससे आपकी पर्सनैलिटी बनेगी, जिसने यहां से शिफ्ट होकर कहीं और जाना है। बस इज्जत मोहतरम, न खुद धोखे में रहिएगा, न किसी और को धोखे में डालिएगा, आपका असली इम्तिहान यहां पर है। और मैं मामूलन कोशिश करता हूँ कि पहले दूसरे तीसरे दिन में ये सब चीजें क्लियर कर दूं कि भाई ऐसा ना हो आपको धोखा हो जाए कि आपको यहाँ और कुछ और हो रहा है, आप नहीं कुछ और नहीं हो रहा है, असली काम ये हो रहा है, बाकी सब इसके साथ साथ। अच्छा, अब इस काम को करने के लिए आपको क्या करना होगा? मैंने नस किया आपकी खिदमत में, इंपॉर्टेंट तरीन चीजों में से एक चीज जो आपको चाहिए वो कंट्रोल। अगर आप कंट्रोल के मास्टर हैं, आप स्पीड के मास्टर हैं, आपने सब कुछ अचीव कर लेना, लेकिन अगर आप कंट्रोल में कमजोर हैं, आप इस इम्तिहान में बहुत मुसीबत में हैं। आपको कंट्रोल बढ़ाना होगा, और इसको मैंने बहुत देखा है, बहुत अपने ऊपर भी आजमाया है, अपनी औलादों पर भी आजमाया है। जिसका कंट्रोल अच्छा है वो इस इम्तिहान में कामयाब है, और जो कंट्रोल में कमजोर है, कंट्रोल किस चीज की वजह से खराब होता है? ख्वाहिशात की वजह से। इंसान के अंदर कुछ ऐसे इमोशंस हैं जो उसको बुरी तरीके से एक तरफ ले जाती है, अगर वहां पे कंट्रोल कर ले तो वो इस मुसीबत में निकल जाता है, कंट्रोल ना कर सके फिर मुसीबत में फंस जाता है। और अल्लाह ने माह रमजान उस कंट्रोल को मजबूत करने के लिए दिया कि तुम माह रमजान में अपने कंट्रोल को प्रैक्टिस करो, इसे मजबूत कर दो। चलिए, मैंने काफी बातें कर ली, मैं इसको समराइज करता हूँ, समराइज बल्कि समाप्त करता हूँ, और इसको एंड की तरफ जाने की कोशिश करता हूँ, जो आज के लिए काफी हो जाए। दुरूद भेजें मुहम्मद वाले अगर ये तमाम बातें तो थियोरेटिकल हो गई, अब फिर भी डर लग रहा था कि भी आपने प्रैक्टिकल बातें करनी है, लोग अमल की दुनिया में रहे हैं, ऐसा ना थियोरेटिकली बहुत कुछ कह दिया, प्रैक्टिकली कुछ भी ना हो, तो प्रैक्टिकली हमें करना क्या है? आप और मैं अपने आप से सवाल कर सकते हैं। कुरान करीम फरमाता है, इन्ना इंसान अला नफ्सिही बसीरा, इंसान अपने नफ्स के ऊपर बसीरत रखता है, उसे अपने बारे में सब पता होता है। वलौ अल्का माअदीरा, अगरचे अपने उज़्र पेश करता रहता है, जानता सब कुछ है, एक्सक्यूज़ेस बनाता रहता है, मेरे मैंने ये गलत काम किया ना, उसकी वजह ये मैंने गलती नहीं की, एक्सक्यूज ये कि वो कुरान कहते हैं ये तो ये करता रहता है। लेकिन पहला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट, इन्ना इंसान अला नफ्सिही बसीरा, इंसान अपने नफ्स के ऊपर बसीरत रखता है। अच्छा, बसीरत रखता है, हम इससे कैसे फायदा उठाएं, क्यों फायदा उठाएं? मैं अपने आप से सवाल कर सकता हूं, मेरे अंदर कौन सी खासियतें ऐसी हैं जो खुदा वाली खासियत हैं, और कौन सी खासियतें ऐसी हैं जो खुदा वाली नहीं है, या जानवरों की हैं या शैतान की हैं? तो जज कर सकता हूं क्या? हाँ बिल्कुल कर सकता हूं। मिसाल के तौर पर, अगर खुदा की खासियत यह है कि वो देर से माफ करता है, खुदा सही और रजा है, जल्दी राजी होने वाला है, जल्दी बख्श देता है, मैं कैसा हूं, लोगों को जल्दी माफ करता हूं, या उनकी बात दिल में लेकर बैठ जाता हूं फिर माफी नहीं करता, मैं कैसा हूं? अच्छा, खुदा की एक खासियत है, सरदार अलूब है, ऐब पर दूसरों के ऐब अगर उसे पता चल जाते हैं तो पर्दे डाल देता है, छुपा देता है, मैं कैसा हूं, दूसरों के ऐप फैलाता हूं या पर्दे डालता हूं, मैं कैसा हूं? अच्छा, खुदा ने एक और बात है, वो रहीम है, किसी को देखता है कि मुश्किल में है, उस पर रहम करता है, मैं कैसा हूं? मैं रहीम हूं, मैं किसी को मुश्किल में देखता हूं रहम करता हूं, या नहीं नाउज़ुबिल्लाह ताला मैं नजरअंदाज करता हूं, इग्नोर करके चल जाता हूं, मैं कैसा हूं? अपने आप को तो मैं जानता हूं ना, मसलन खुदा मुझसे चाहता है कि तुम मुतवाज़े रहो, हम्बल रहो, मैं क्या सब मैं हम्बल हूं या नाउज़ बिल्लाह इसके मुकाबले में एक जानवर है जो बेमौका चिल्लाता है और उसके चिल्लाने को सब बुरा समझते हैं और जानवर गधा है बेमौका चिल्लाता है और उसके चिल्लाने को सब बुरा समझते हैं। हम मैंने की शक्ल में क्या हस्ती था हमें से बहुत सारे लोगों की शक्लें कुछ और हो जाती है ये रिवायात पे मुस्तनद है कैसा होता है आपने पता नहीं कितनी रिवायतें सुनी होंगी इसके बारे में जिनको मैं अभी वक्त की कमी की वजह से नहीं दोहराना चाह रहा। अपने आप से हमेशा ये सवाल पूछते रहिए मेरी फना आदत ये सही है या गलत है इसको चेंज होना चाहिए नहीं होना चाहिए। मिसाल के तौर पर फर्ज कीजिए जगह जगह ऐसा है मिसाल के तौर पर मुझे दो चार चीजें पता है कहीं लोग बैठते हैं बात करना शुरू करते हैं मैं फौरन उनके सामने अपनी काबिलियत जमाता हूँ दिखाता हूँ मुझे आता है ये अच्छी आदत है। इसका इलाज यही होना है या बरसात में होना है अभी होना है या मरने के बाद होना है। अगर अभी होना है तो तीन पैरामीटर पर मेरी मर्जी से होगा आसानी से होगा कम मुद्दत में होगा और अगर मैंने अभी यहां पे इलाज नहीं किया तो क्या होगा फिर ये मेरी जो जबर के ऊपर होगा सख्ती पे होगा और लंबी मुद्दत में होगा। तो इससे पहले कि मैं मर जाऊं और मेरा इलाज उन लोगों के पास चला जाए जो बहुत सख्ती से इलाज करेंगे मैं खुद ही अपना इलाज कर लूं और आसानी से हो जाएगा। जो आसानी से कह रहा हूं इसमें भी मेहनत तो करनी पड़ेगी है सही क्योंकि जो हम सारी सारी मेहनत करना चाह रहे हैं जो हम काम करना चाह रहे हैं वो यही काम है। मैंने जो यहाँ के लिए उन्मान सोचा था वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड उर्दू वाला हो गया इससे मैंने उस टाइटल को यहाँ पे बताया नहीं वैसे जो मैं अपनी नोटबुक से लिख के लाया था नोटबुक पे वो मैंने सोचा था कि इंसानी किरदार के तामीरी और तखरीबी पहलू तामीरी और तखरीबी किसे कहते हैं कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव कुछ ह्यूमन कैरेक्टर के अंदर ऐसी चीजें हैं जो कंस्ट्रक्टिव हैं कुरान ने वो कौन कौन सी बताए हैं कुछ ह्यूमन कैरेक्टर के अंदर ऐसे टाइटल हैं जो बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हैं कुरान करीम ने वो टाइटल्स कौन कौन से दिए हैं तो मैंने क्या किया था कि जो कुरान करीम ने कंस्ट्रक्टिव टाइटल्स दिए हैं उनको एक साइड कर लिया और जो तबाह करने वाले टाइटल थे उनको एक साइड कर लिया फिर उनको कंपैरिजन में रखा कि किस कंस्ट्रक्टिव के मुकाबले में कौन सा डिस्ट्रक्टिव आ रहा है। मिसाल के तौर पर एक बंदा है जो मुवाहिद है तौहीद उसके अंदर है एक बंदा है जो मुशरिक है कंस्ट्रक्टिव टाइटल क्या है तौहीद और डिस्ट्रक्टिव टाइटल कौन सा है शिर्क हमें इन दोनों को समझ लेना चाहिए। तो फायदा क्या होगा मैं सारे कंस्ट्रक्टिव टाइटल जो है वो अपने अंदर जमा कर दूंगा और इसके मुकाबले में जो खराब करने वाली चीजें वो अपने आप से दूर कर दूंगा। मैंने आपके लिए सब कुछ अर्ज किया कल से इस पर मेहनत शुरू करेंगे। आखिर में एक बात और आपसे कह दूंगा असल में मामूली कोशिश ये कर रहा होता हूँ कि जो बड़े लोगों ने बातें कही है उनको सही बनाकर आपकी जल्द में अर्ज करूँ। उनमें से एक कॉल है अल्लामा मोहम्मद हुसैन तबतबाई का। मोहम्मद हुसैन तबतबाई कौन है आपने तबतबाई बच्चे का नाम सुना होगा जिसने 6 साल की उम्र में हिंदू कुरान किया उनके दादा मोहम्मद हुसैन तबतबाई जिन्होंने तफसीर अल-मीज़ान लिखी तफसीर अल-मीज़ान ये और इनके भाई अगर मैं आपसे कहूं अभी एक लफ्ज तो आप शायद इस जुमले इस लफ्ज को नहीं मानेंगे तो जो कुछ आपके जहन में इस लफ्ज है ये दोनों उससे बहुत मुकर है। आपके जहन में लफ्ज है जीनियस और जैसे मैं कहूं जीनियस आपके जहन में पहली पर्सनैलिटी कौन सी आएगी आइंस्टाइन मैं जानता हूं आपने क्या पढ़ा है मुझे भी पता है मुझे पता है आप मीडिया से क्या सुन रहे हैं मुझे भी पता है। तो जैसे मैं कहूंगा जीनियस आपके जहन में आएगा आइंस्टाइन कंफर्म कह रहा हूं उनके दोनों भाई उससे ऊपर थे कंफर्म कह रहा हूं मेरी नजर में वो जीनियस है वो जीनियस ठीक है। उन्होंने जुमला कहा वो जुमला बहुत अजीब जुमला था कह रही याद रखो हम लोग बाकी रहने के लिए खल्क हैं हम मिटने के लिए खल्क नहीं हैं हम लोग बाकी रहेंगे हम लोग बाकी रहेंगे क्या मतलब हम फेजेस चेंज करते रहेंगे मरेंगे नहीं हम लोग हमारी बॉडी मरेगी दुनिया मर जाएगी फिर हम बरसात में चले जाएंगे फिर बरसात बन जाएगी, फिर हम महशर में चले जाएंगे, फिर महशर खत्म हो जाएगी, फिर हम जन्नतों में चले जाएंगे, फिर जन्नतों के बाद खालिदीना फिया है। इस दास्तान में हमेशा चलना है, हमें बैठना नहीं है। एक वक्त फेज आएगा बीच में जब खुदा उनका सबको खत्म कर देगा महशर के, लेकिन फिर दोबारा जिंदा कर देगा। हम लोग चलते रहेंगे, हम लोग नहीं मिटते। अब मैं इसके साथ एक और जुमला भी ऐड कर देता हूं, हमेशा याद रखिएगा, गुनाह के लिए सिर्फ दो रास्ते हैं। अगर किसी ने कोई गुनाह कर दिया है तो दो रास्ते हैं, या तो तौबा कर ले तो मिट गया, वरना नहीं खत्म होता, वरना ये चलेगा सारी उम्र के लिए चलेगा। बस मैंने जितने गुनाह किए मेरे पास दो रास्ते हैं, या तो मैं तौबा कर लिया और तौबा को खुदा ने कबूल कर भी लिया तो चलो मिट गया, मामला खत्म हो गया, और अगर नहीं कबूल हो और नहीं कि मैंने तौबा तो ये चल रहा है। ये मत सोचिएगा एक पांव 40 साल के बाद खुद बहुत डिलीट हो जाएगा, डिलीट होता है, ये चलता है। इसको आपको उल्टी डिलीट करना है। आखिर में बस आपको ये लतीफा नमा सुना, आपको मैंने बड़ा परेशान कर दिया, वैसे आपको परेशान नहीं होंगे, कुछ परेशान हो जाएंगे, कुछ नहीं जवाब दूंगा। खुदा मुझे दावत दे, آپ کے ماہ بار کا رمضان رکھا میرے آپ کے جیسے گناہ گاروں کے لیے بھائی تم لگاؤ اپنے گناہوں کو صاف کرو مجھ سے وعدہ کرو اس کے اوپر عمل کرو گے اپنی زندگیوں کو بہتر بناؤ گے تو میں تمہیں معاف کر دوں گا. بغور اس میں کہہ رہی کہ وہ معاف کرتا ہے تو اس کا بھی نہیں چھوڑتا بالکل کلیئر کر دیتا ہے. ٹھیک ہے بڑا اچھا ہوتا ہے ہمارا خدا تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور دعا سے پہلے وہی کل والی عادت کو دہراتے ہیں ان شاء اللہ خدا ہم برکت نصیب کرے گا. بسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله 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 رضي الله عنه وسلم محمد وآل محمد کا اس صغير کو ہم سے قبول فرما. اے باب پر رضی اللہ تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا ان کی نورانیت سے دلوں کو منور فرما. اے باب پر رضی اللہ دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی رہنمائی نصیب فرما. اے باب پر رضی اللہ اس دنیا میں ان کی زیارت اور اس دنیا میں ان کی شفاعت سے سرفراز فرما. اے باب پر رضی اللہ پرچم قرآن اہل بیت کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی طاقت نصیب فرما. اے باب پروردگار جس کسی نے بھی خلوص کے ساتھ تیرے پرچم کو بلند کیا ہے اس کو فتح و نصرت نصیب فرما. کفر و نفاق کو ذلت و خواری نصیب فرما. اے باب پروردگار ہم میں سے جو بیمار ہیں بحق بیماری کربلا شفایا عاجل و کامل نصیب فرما. اے باب پروردگار جو بے روزگار ہیں قرض کے بار میں ہیں مشکلات کو جھیل رہے ہیں اپنی اولاد کی خوشیوں کے متمنی ہیں بحق محمد وآل محمد ان سب کی مشکلات کو برطرف فرما. اے باپ پروردگار کچھ بے گناہ جیلوں کے اندر ہیں بالاخص ایک بے گناہ مرد نظر ہے بحق اسرائے کربلا آزادی و رہائی نصیب فرما. اے باپ پروردگار دعائیں تیری حجت کی ہیں باپ پروردگار یہ دنیا منتظر تیری حجت کی ہے باپ پروردگار یہ دنیا منتظر آواز امیر المومنین کی ہے باپ پروردگار تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کی ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ہماری اولادوں کو ان کی جان ساروں میں قرار فرما. ہماری زندگیوں کا اختتام بھی ان کی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطاہرین.